छठे दिवसीय व्याख्यान में बत्ती चली गई थी, इसीलिए प्रवचन की रिकॉर्डिंग जनरेटर की सहायता से की गई, अतः रिकॉर्डिंग बहुत साफ नहीं हो पाई है। असुविधा के लिए कृपया क्षमा करें। पुनः सातवां, आठवां और नवां व्याख्यान आप साफ रिकॉर्डिंग में सुन पाएंगे। धन्यवाद। षष्ठम दिवस।
सर्वतो क्षिशिरोमुखम् सर्वतश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति जैसे कहा मैं जीव को बतलाऊंगा वह जीव कैसा है तो वह परम ब्रह्म है। सत और असत इन दोनों प्रकारों से उसको समझना संभव नहीं। अब कहते हैं फिर यदि इन दोनों प्रकारों से उसको समझना संभव नहीं तो इसके सिवाय और तो कोई उपाय समझने का बचा ही नहीं। तब कहा उसको पाने का उसको पहचानने का साधन हर पदार्थ है। एक दिन पहले भी बतलाया था शुरू में आदमी सोचता है उसको पाने का कोई स्थल नहीं और बाद में पता लगता है कि प्रत्येक कण कण उसको ही जना रहा है। सर्वतः पाणिपादं देयम् संसार के समस्त हाथ पैरों के द्वारा वो जाना जाता है। ठीक जिस प्रकार से ऊर्जा एनर्जी कार्य से पता लगती है उसके स्वरूप को सीधा समझना चाहो तो समझ में नहीं आ सकती। बिजली को ले लो बिजली एक ऊर्जा है। बिजली का क्या रूप है यदि इसको पूछा जाए तो कोई भी ठीक ठीक बता नहीं सकता। बिजली क्या बला है क्या चीज है वैज्ञानिकों से भी पूछोगे तो बिजली का अपना क्या रूप है इसको बताना उनके लिए भी असंभव है। परंतु लट्टू जलता है तो हमको बिजली का पता लग जाता है। पंखा चलता है तो हमको बिजली का पता लग जाता है। तापक चलता है गीजर चलता है तो हमको बिजली का पता लग जाता है। शीतक चलता है एयर कंडीशनर चलता है तो हमको बिजली का पता लग जाता है। बिजली अत्यंत विरुद्ध कामों को करती है। ऐसा नहीं समझना कि तापक में गीजर में गर्म करने वाली बिजली अलग है और शीतक में एयर कंडीशनर में ठंडा करने वाली बिजली अलग है। जो बिजली गर्म करती है वही बिजली ठंडा करती है। जो बिजली प्रकाश देती है वही बिजली पंखे को गति देती है चलाती है। इन कार्यों को देख करके हमको बिजली के बारे में निश्चय हो जाता है बिजली चल रही है। परंतु यदि कोई प्रश्न करे क्या इनमें से कोई कार्य बिजली है, इन सब कार्यों का होना बिजली पर निर्भर है। इनके कार्यों को देख करके बिजली का पता लगता है परंतु बिजली का स्वरूप फिर सब से परे रहे। ठीक इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं, सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरो मुखम् सर्वतः श्रुतिमत् लोके। परमात्मा को यदि लोके व्यवहार से जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, अवलोकन करना चाहते हो, लोक इस संसार के अंदर, ऐसा नहीं है कि परमात्मा के किस रूप को देखने के लिए तुमको किसी दिव्य लोक में जाकर के जैसा लोग चित्र बना दिया करते हैं भगवान के विराट रूप का, उसमें हजारों सिर दिखा देते हैं, हजारों पैर दिखा देते हैं। साधारण आदमी समझता है कि किसी लोकांतर में या किसी ध्यान में जाकर के किस प्रकार की मूर्ति का दर्शन होता होगा, अथवा कोई हमारे सिर में तीसरा नेत्र दिव्य चक्षु खुल जाता होगा, उससे ऐसा दिखता होगा। इस प्रकार की संभावनाओं को हटाने के लिए भगवान ने कहा, लोके यही इस संसार में सर्वत्र जहां तुमको हाथ पैर आंखें सिर मुख और कान दिख रहे हैं, लोके ये सब दिख रहे हैं और सबके अंदर हमको दिख रहा है कि कोई है जिसको लेकर के आंख देखती है, कान सुनता है, वो है तो ये सब हो रहा है और जब वो नहीं तो कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार से उसके होने से क्या क्या हो सकता है वह सब पता लगता है। परंतु उसका पता केवल एक शरीर में नहीं, कहा है सर्वतः पाणिपाद। ऐसा नहीं है कि मेरा हाथ चलाने वाला कोई और है, मेरे शत्रु या मेरे विरोधी के हाथ को चलाने वाला कोई और है। ऐसा नहीं है कि पुलिस की गोली चलाने वाला पुलिस कोई और है, आतंकवादी की गोली चलाने वाला टेररिस्ट की गोली चलाने वाला कोई और है, सर्वतः पाणि। जो है आत्मतत्व पुलिस के हाथ से गोली चल जाता है, वही वह आतंकवादी के हाथ से भी गोली चलाता है, सर्वतः पाणिपादं तत्। भ्रम इसलिए है कि हम समझते हैं ये सब अलग अलग हैं। सारी क्रियाओं को वह कर रहा है, परंतु भ्रम ये हो जाता है, जैसे साधारण गांव के आदमी को भ्रम हो जाता है, ठंडा करने वाली बिजली और गर्म करने वाली बिजली एक कैसे हो सकती है, उसकी समझ में नहीं आता। जो चीज ठंडा करेगी वो गर्म कैसे करेगी, जो गर्म करेगी वो ठंडा कैसे करेगी, वो समझता है इसकी बिजली अलग होती होगी, उसकी बिजली अलग होती होगी। हम लोग भी को इस गांव के आदमी की तरह है, इसलिए हमको लगता है तो राम के हाथ पैर को चलाने वाला कोई और होगा, रावण के हाथ पैर को चलाने वाला कोई और होगा। अतः भगवान ने कहा कि गेल कौन है, खाली तुम्हारे हाथ पैर को चलाने वाला गेल है, ऐसा नहीं, सर्वतः पाणिपादम, जो सबको चलाने वाला वह गेल है। अब इन सबको जो चलाने वाला है वह इनको किससे चलाता है, तो यह उसकी शक्ति है। जिस प्रकार बिजली में यह शक्ति है कि भिन्न भिन्न यंत्रों के अंदर विद्यमान होकर के उनको भिन्न भिन्न कार्यों में प्रवृत्त करे, बिजली की शक्ति है। इसी प्रकार उस परमात्मा की जो शक्ति है माया शक्ति, उसके द्वारा वह इन सब भिन्न भिन्न कामों को करता है। उस माया के अंदर अनंत शक्तियां हैं, इसलिए न जाने कितनी सृष्टियां हो चुकी, परंतु सारी सृष्टियों को करते हुए आज तक भी उसमें कोई कमी नहीं आई कि माया शक्ति में कोई कमी आ जाए। उसकी अनंतता को देखो, कम से कम गत 150 वर्ष से सभी देशों में लोगों के उंगलियों की छापे ली जाती हैं, फिंगरप्रिंट्स, अरबों आदमियों के 150 साल में ले लिए गए, परंतु आज तक कोई दो उंगलियों की छापे एक जैसी नहीं निकली। आदमियों की बात छोड़ो, आदमियों की 5 उंगलियां, उनके अंदर भी कभी दूसरी चीज वैसी ही बनती नहीं। विचार करो इस माया की अनंतता का। हमारे यहां बहुत बड़े बड़े आजकल वस्त्र निर्माता हो रहे हैं, कपड़ों की डिजाइन बनाते हैं और बड़ा घमंड करते हैं, परंतु जब हम उनके डिजाइन को देखते हैं, रूप को देखते हैं, तो कोई 40 साल पहले मिल जाता है, कोई 60 साल पहले मिल जाता है, घूम फिर करके वही फिर आ जाता है, 100 साल तक भी नहीं जाना पड़ता। क्या कारण है? हमारी सीमा तो इतनी ज्यादा है कि हम 100 साल के अंदर भी उसको बदल नहीं सकते, और जिस डिजाइन को हम बनाते हैं उसको कम से कम 10-20 हजार लोग पहनते हैं। ये नहीं है कि हरेक का कपड़ा अलग बनता हो और फिर भी उसकी आवृत्ति करनी पड़ती है। और परमात्मा की अनंत माया शक्ति को देखो, उंगलियों की छापे तक एक जैसी नहीं होती, प्रत्येक व्यक्ति के भी 5 उंगलियों की छापे एक जैसी नहीं। यह अनंत सामर्थ्य उसके अंदर रहती है। प्रायः वेदांत के अंदर एक प्रश्न लोग उठाते हैं, यह अविद्या कहां रहती है? आचार्य प्रवर मधुसूदन सरस्वती लिखते हैं, अविद्यायाः आश्रयस्तु शुद्धं ब्रह्मैव। अविद्या कहां रहती है? तो शुद्ध परब्रह्म परमात्मा में गुण विद्या रहती है। जब कहते हैं शुद्ध परब्रह्म परमात्मा में अविद्या रहती है तो लोग जरा चौंकते। लोग कहते हैं परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, उसके ऊपर वह अज्ञान कैसे रहेगा? क्योंकि उनको लगता है ये माया कोई दोष है। परंतु चीज एक ही दोष भी हुआ करती है और दोष नहीं भी हुआ करती है। भगवान पद्मपादाचार्य कहते हैं, आंख के अंदर हमारे मोतियाबिंद उतरता है। हमारे आंख में जो मोतियाबिंद है वो हमको चीजों को साफ नहीं देखने देता, इसलिए दोष है। जो चीज जैसी है उसको वैसी नहीं देखने देता। एक चंद्रमा को दो तीन चंद्रमा दिखला देता है, साफ चीजों को धुंधला दिखला देता है। कैटरेक्ट आंख में उतरा हुआ मोतियाबिंद दोष है, परंतु दोष नहीं कहे पर वह ठीक चीज को बतलाता है। आंख में उतरा हुआ मोतियाबिंद इस बात को बतलाता है, पूर्व जन्म में मैंने कोई पाप या अधर्म किया, उस पाप के फल स्वरूप मेरे अंदर यह रोग आया है। तो वह मोतियाबिंद जैसी चीजें हैं उनको नहीं देखने देता, परंतु मेरे अंदर विद्यमान जो अधर्म है उसका ठीक ज्ञान करा देता है। मैंने अवश्य वह पाप किया है जिसके कारण मेरी आंख में यह रोग आया है। जिस समय वह यह ज्ञान करा रहा है उस समय वह देख थोड़ी। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा माया शक्ति के द्वारा सारे संसार की सृष्टि करता है, परंतु वह माया उसको आवृत करती नहीं, उसके ज्ञान को ढांकती नहीं, उसके अद्वितीय ज्ञान वैसा ही बना रहता है। हमारे लिए दोष इसलिए होता है कि हमारे ऊपर उसका आवरण काम करता है, इसलिए हमको अपनी असीमता को, अपनी अनंतता को, अपने अद्वैत रूप को देखने नहीं देती। शुद्ध ब्रह्म में रहने वाली विद्या उसको दोष वाला नहीं करती और हमको दोष वाला कर देती है। दूसरा दृष्टांत उन्होंने दिया, कांच के सामने हमने अपने मुख को रखा, कांच के सामने मुख रखने पर हमारे मुख में बिंब रूपता आई, आपके सामने मुख है और कांच के अंदर एक मुख देख रहा है जो प्रतिबिंब रूप है। कांच आने के पहले एक मुंह था, कांच आने के बाद हम दो मुंह देख रहे हैं। इसमें जो हमारा मुख है, जो बिंब है, इसमें कांच के दोषों से कोई दोष आता नहीं। कांच मैला होगा तो मुंह मैला नहीं दिखेगा, कांच में दाग होंगे तो इसमें ऊपर दाग नहीं दिखेंगे। कांच टेढ़ा मेढ़ा होगा तो इस मुंह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परंतु वही कांच में होने वाला जो प्रतिबिंब है, उसमें जो मुख देख रहा है, उसके अंदर दर्पण के दोष आ जाएंगे। अगर कांच टेढ़ा मेढ़ा है तो उसमें मुंह टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। उन्नतोदर
कांच एक तरह का दिखेगा, नतोदर कांच होगा तो दूसरी तरह का दिखेगा। अब तो पता नहीं पुराने जमाने में सर्कस के अंदर तरह तरह के कांच रख करके कहते थे इसमें अपने चेहरे देखो तो कहीं लंबा दिखता था, कहीं मोटा दिखता था। अगर सर्कस में न देखा हो तो किसी बढ़िया वोटर चमचमाती के सामने जो बोनट लगा होता है उसमें जरा कभी अपने चेहरे इधर उधर होकर के देखना कितनी तरह का दिखाई देता। तो दर्पण में पड़ने वाले में तो कितने परिवर्तन, परंतु ये मुहा वैसा का वैसा बना रहता है। दर्पण के सामने दर्पण से संबंध वाला तो ये मुंह भी है और वो मुंह भी है। दर्पण के कारण ही इसमें भी बिंब रूपता है, उसमें प्रतिबिंब रूपता है, लेकिन इसके अंदर विकार है इसमें नहीं। ठीक इसी प्रकार से प्रतिबिंब रूप जो जीव है उसके अंदर तो संसारिता, सीमिता, परतंत्रता ये सब आ जाती है और वह माया उस बिंब रूप पर ब्रह्म परमात्मा में कोई परिवर्तन लाती नहीं। आचार्य लिखते हैं प्रतिबिंब एवं कार्य विशेष जनकत्वात्, कार्य विशेषों की जनकता प्रतिबिंब के अंदर ही आती है, बिंब में नहीं। अविद्या जीवन प्रति एवं वह जो माया शक्ति है, अविद्या शक्ति है, वो जीव को ही ढकती है, जीव को ढकती है। इसलिए जीव के अंदर कार्य विशेष आवरण से प्रयुक्त मन आदि कार्यों को जीव में तो पैदा करती है, उस ब्रह्म में पैदा करती नहीं। अतः जब कहते हैं सिद्धम ब्रह्म के अंदर ही वह अविद्या है, वह ज्ञान है, वह माया है, तो घबराना नहीं चाहिए। उसमें वो शक्ति रूप से है और हमारे ऊपर वह अपना आवरण डालने वाली बन जाती है। दूसरी शंका जब लोग करते हैं कि ज्ञान स्वरूप होने के कारण वो ब्रह्मा अज्ञान को नष्ट तो नहीं कर देता, तो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म अज्ञान का नाशक नहीं है, ऐसे समझो।
दीजिए।
घात को बढ़ाता है, इसीलिए यदि तुम्हारे पास तृणभू है, तुम्हारे पास लोन है, परंतु भूल से तुमने इतने बड़े बड़े 4-6 पेड़ लगा दिए। पेड़ बढ़ करके छाया करते हैं, तुम रोज माली को डांटते हो, पड़ोसी का तृणभू तो इतना बढ़िया है और अपने तो कहीं 2-4 घास निकली है, कहीं ऐसा ही है, तुम इसको ठीक नहीं रखता। माली कहता है जी उनके यहां तो पेड़ नहीं है, घास को बढ़ने के लिए धूप चाहिए, जब तक सूर्य की किरणें उस पर नहीं पड़ेंगी तब तक घास ठीक तरह से बढ़ेगी नहीं। तो सूर्य घास को बढ़ाने वाला है। अब एक प्रयोग करो, सूर्य घास को बढ़ाने वाला है, कहीं से सूर्यकांत मणि ले आओ, कॉन्वेक्स लेंस ले आओ, आतकी शीशा ले आओ, उसको घास के ऊपर केंद्रित करो, फोकस करो, क्या होता है, घास में आग लग जाती है। किसने जलाया, क्या उस आतकी शीशे ने जलाया, तो सूर्यकांत मणि ने जलाया। अगर ऐसा हो तो रात में जब सूरज नहीं है तब खूब बैठ के फोकस करते रहो, जलेगी वो घास। इसलिए जलाने वाला वह सांच नहीं है, जलाने वाला तो सूर्य है। अगर सूर्य जलाने वाला है तो सूर्य बाकी दिनों में क्यों नहीं जलाता, वो तो उसका पोषण करता है। सूर्य कांत में चढ़ा हुआ जो सूर्य है, आतकी शीशे में चढ़ा हुआ जो सूर्य है, वह ही घात को जलाएगा, अन्यथा तो वह घात को पुष्ट करेगा, बढ़ाएगा। इसी प्रकार से परमात्मा की ज्ञानाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति यदि तुमने बनाई तो उस वृत्ति के अंदर चढ़ा हुआ वह ब्रह्म तो जरूर संसार को नष्ट करेगा, परंतु जब तक वह वृत्ति नहीं बनी तब तक तो वह परमात्मा इस संसार को पुष्ट ही करता रहेगा। ज्ञानम ही न चैतन्य मात्रम, अज्ञान का विरोध जो करने वाला है वो चैतन्य मात्र ज्ञान नहीं है, किंतु वृत्ति प्रतिबिंबितम, विशेष प्रकार की वृत्ति में जब प्रतिबिंबित होगा तभी उसको नष्ट करेगा। तो वही परमात्मा सारे जगत को पुष्ट करने वाला, सारे जगत को चलाने वाला, हाथ पैर सारे संसार को वह चला रहा है, वही परमात्मा विशेष साधनों के द्वारा विशेष वृत्ति हो जाने पर उसको ही जलाएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बैठे हुए थे, अकस्मात घबराया हुआ इंद्र वहां पहुंचा, भगवान ने बड़े प्रेम से उसको बैठाया, कहा क्या बात है सतत्र को, बड़े घबराए हुए से लग रहे। उसने कहा महाराज प्राग ज्योतिषपुर में नरकासुर एक असुर विशेष आया है, उसने देवताओं के राज्य पर भी कब्जा कर लिया है, बाकी वे सब चीजों के अंदर वह धर्म को बढ़ा रहा है। एक दो नहीं संसार के 16,000 राजाओं को अपने नियंत्रण में करके असुरों का जो चाल तब थी वो अब है, उन राजाओं की कन्याओं को ले जा करके अपने कारागार में डाल दिया है। वो 5,000 साल पहले भी असुर यही करते थे, आज भी जब कभी असुर करते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं तुम्हारी बेटी बहन को भगा ले जाएंगे, उनको लगता है ये कोई बड़ा भारी कार्य है, ये आसुरी संस्कृति है। इसीलिए आसुरी संस्कृति वाले पद्मिनी को देखते हैं, कहते हैं ये हमें चाहिए, राजा हो तुमको राज्य चाहिए, यहां तक तो बात समझ में आ सकती है, पद्मिनी चाहिए, ये आसुरी है, असुर भावनाएं हैं। जब इंद्र ने ये कहा भोगो यम नरको नामा प्राप्त ज्योतिषपुरेश्वर करो कि सर्वभूता नाम अपघातम अरिंदम, सब प्राणियों का अपघात कर रहा है। इसलिए उसका शासन करना, उसको नियंत्रण में लाना ये जरूरी है। ज्योतिष को ही तेज कहते हैं, इसलिए आज भी उस ज्योतिषपुर को तेजपुर कहते हैं, आसाम में है, कामरूप देश उसको प्राचीन काल में कहते थे। ये इसलिए याद रखना जरूरी है कि वर्तमान काल में हम लोगों को कुछ ऐसा वहम पैदा करा दिया गया है, आसाम और उधर रहने वाले जो देश है वो सबको ही वस्तुता हमारे भारत के अंग नहीं थे, मानो अंग्रेजों ने जीत के मिला लिए थे। कारण उसका क्या है, तो मुसलमानों ने उन देशों को जीत नहीं पाया था, और हम लोगों को इस ढंग का इतिहास पढ़ाया जाता है कि मुसलमानों ने जितना जीता वो तो हिंदुस्तान और बाकी हिंदुस्तान से बाहर। अतः हम लोगों को लगता है कि ये तो अंग्रेजों ने जब जीता तो हमारे साथ मिल गया, वैसे तो ये सब बाहर है, और उनके लिए अंग्रेजों ने एक गाली का नाम निकाल रखा है जिसकी हम भी नकल करते हैं, हम उनको कहते हैं ये ट्राइबल्स हैं। ट्राइबल्स का मतलब क्या होता है, ट्राइब का मतलब क्या होता है, कोई नहीं इसका, उनको किस आधार पर तुम ट्राइबल कहते हो। सभी तो ट्राइब से ही है संसार के अंदर, क्या हम लोग ट्राइब्स नहीं है जो हम लोग ट्राइबल अपने को न कहें, या जितने विदेश वाले हैं वो ट्राइब नहीं है। ये तो एक नाम विशेष को करके ये कह देना कि वो सब असंस्कृत लोग हैं, ठीक जिस प्रकार से अंग्रेजी भाषा 350 साल की, अंग्रेज यहां राजा हुए उनकी भाषा तो हुई लैंग्वेज, और हमारी हजार हजार मंदिर हजार और उससे भी प्राचीन जो भाषा है तमिल तेलुगु कन्नड़ बंगला गुजराती वो सब भाषाएं क्या हो गई, वो वर्नाक्यूलर है, वर्नाक्यूलर वो लैंग्वेज नहीं है, एक नाम दे दिया, बोलियां है, भाषा और बोली में फर्क क्या है, जो भाषा जाए वो भाषा, जो बोला जाए वो बोली, दोनों में फर्क क्या है। लेकिन ऐसा उसका जहर हमारे सिर पर चढ़ गया वर्नाक्यूलर सुन सुन करके, भारत की आजादी के बाद हमारे सिर पर वही जहर चढ़ा रहा, अरे हमारी तो पिछड़ी हुई बोलियां हैं, ये तुरंत कहां से विज्ञान को सिखा सकेंगी, उसके लिए तो हमें ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो लैंग्वेज थी हमारी वर्नाक्यूलर थी। इसी प्रकार हम लोग तो हो गए मेन स्ट्रीम, किसने बनाया तुमको मेन स्ट्रीम, और वो लोग हो गए प्राइवेट, उनको सुधारने वाले हम हो गए। तुमको मेन स्ट्रीम का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिया किसने, तुम अंग्रेजों की मान्यताओं को मानने वाले इसलिए तुम मेन स्ट्रीम, और जो अंग्रेजों की मान्यताओं को नहीं मानने वाले वो ट्राइबल। उस काल के अंदर भी वहां पर ऐसी ही संस्कृति थी। अब जब इंद्र ने आकर के भगवान से ये बात कही, भगवान ने यह नहीं कहा कि ये सब तो अपने से बाहर है, वहां कहां हमको जाना है, आर्यावर्त थोड़ी है। भगवान ने कहा ठीक है, अगर ये परिस्थिति है तो इस परिस्थिति में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भगवान वहां से चले, प्रागज्योतिषपुर पहुंचे, पहुंच करके उन्होंने संदेश भेजा कि मैं युद्ध करने के लिए आ गया हूं, या तो तुम अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को छोड़ो, अन्यथा युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। नरकासुर का बहुत बड़ा सेनापति था मुर, सारे प्रागज्योतिषपुर का रक्षण करने वाला वही था, उसके 5 सिर थे। नरकासुर ने उससे कहा कि देखो ये कौन आ गया, जाकर के इसको तुम दंडित करो। मुर वहां पर गया, साथ में अपने बच्चों को भी लेकर के गया, उसके 7 पुत्र थे, और भी फौज को लेकर के गया। युद्ध हुआ, भगवान ने धीरे धीरे उन सबको मार दिया, मुर भी मर गया और जितने उसके पुत्र थे वो भी सारे मर गए। उसके बाद उसकी सेना का अधिपति था हयग्रीव, उसको भेजा, भगवान ने उसको भी युद्ध में परास्त करके समाप्त कर दिया। उसको समाप्त करके भगवान बड़े जोर से अपने 5 दिव्य शंख को बजाने लगे। 5 दिव्य शंख की आवाज को सुनकर के घबराया, अब वह खुद ही युद्ध करने के लिए बाहर निकल के आया। युद्ध करते हुए भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटा। जब उसका सिर काटा तो वसुंधरा पृथ्वी वहां प्रकट हुई और पृथ्वी ने कहा, भगवान ये आपका ही बच्चा है। भगवान ने कहा, मेरा बच्चा कैसे है? तो पृथ्वी ने उनको याद दिलाया, यदा हमुद्धृता नाथा त्वया शूकर मूर्तिना, जब आपने वराह अवतार लिया था उस समय वराह अवतार शूकर मूर्ति के द्वारा पृथ्वी को समुद्र में से बाहर निकाल के लाया गया था। उस समय आपका और मेरा स्पर्श हुआ, संस्पर्श भव पुत्र तदायम मय्य जायत, उस समय आपके स्पर्श से ये पुत्र मेरे पैदा हुआ, इस प्रकार से ये आपका ही पुत्र है, इसलिए इसकी सदगति होनी चाहिए। भगवान ने उसकी सदगति की। वहां पर जाकर के जितनी कन्याओं को नरकासुर ने वहां बंद किया था 16,000, उन सब से भगवान ने कहा कि अब तुम लोग क्या चाहती हो? अपने अपने पिता के घर तुमको भेज दिया जाए। उन्होंने कहा, दीर्घ काल से हम यहाँ पर हैं, अब हम अपने पिता के घर नहीं जाना चाहती, हम सब आपको ही वरण करती है। तब भगवान ने उन 16,000 के साथ विवाह किया और उन सबको लेकर के भगवान वापस द्वारका आए, उन सबका इंतजाम किया। अब विचार करो, इसके अंदर कोई सूक्ष्म बात भी शास्त्रकार बताना चाहते हैं। नरकासुर कौन है? तो नरकासुर वस्तुतः अल्प हुआ हुआ जो नर है, अर्थात यह जीव ही नरकासुर है। राज्य तो ये प्राग ज्योतिषपुर का करता है, वीरपुर का करता है। ज्ञान रूपि प्रकाश का ये राज्य करता है, परंतु है ये असुर। असुर का अर्थ होता है असौ प्राण्य रमती, असुर का अर्थ होता है प्राण, जो प्राणों के धर्म में ही रमण करे उसको असुर कहते हैं। प्राणों का धर्म खाना पीना, इसलिए असुरों का लक्षण जिसको आजकल अंग्रेजी में कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये जो मानता है वो असुर है। खाना पीना ये सारे प्राण के धर्म है, उसी में रमण करता है। तो यह जीव ही वस्तुतः नरकासुर है। पैदा तो ये भगवान विष्णु और पृथ्वी अर्थात माया योनि से हुआ है। पिता इसके विष्णु परब्रह्म परमात्मा, माता इसकी पृथ्वी माया शक्ति अविद्या योनि, परम परमात्मा की शक्ति से परमात्मा के द्वारा पैदा हुआ है, इसलिए इसके वंश में कोई खराबी नहीं है। लोक में भी पिता की जाति का ही लड़का होगा ना, तो विष्णु का लड़का हुआ तो विष्णु की जाति का है। परंतु कुसंग के द्वारा, गलत ढंग से द्वारा ये नरकासुर बन गया है। क्या कारण, क्यों ऐसा बना? तो जब भगवान ने वराह अवतार लिया था, त्वया शूकर योनिना, आपने उस समय शूकर मूर्ति को धारण किया था, तो वराह के शरीर के ऊपर नैल जरा चिपका हुआ रहता। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ने जिस समय जीव को उत्पन्न किया, उस समय माया उपाधि से अपने को आवृत करके उत्पन्न किया, किया तो नहीं, इसलिए उसका असर माया युक्त होकर के उन्होंने किया, इसलिए हमारे अंदर आसुरी चीज आ गई। यदि इस माया के लेप को हम हटा दें तो हमारा वंश तो विष्णु का ही है, शुद्ध वंश है। अब ये नरकासुर जहां कहीं किसी राज्य में जाता है, लड़की का हरण करता है। किसी प्रकार ये जीव क्या करता है, जहां जाता है वहां की वासनाएं बटोर का ही रहता है। 16,000, क्योंकि वस्तुतः हमारी वासनाओं के केंद्र या कर्मेंद्रियों की वासनाएं, इसको पकड़ू, यहां जाऊं, ये बोलूं, या ज्ञानेन्द्रियों की वासनाएं हैं, इसको देखूं, इसको सुनूं, इसको छूं, तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 प्राण और मन, इन 16 के वासनाएं, सहस्र का मतलब होता है अनंत। जब कहते हैं वहां हजारों आदमी थे तो कोई गिन के नहीं कहता है, बहुत। तो इस प्रकार से जहां जहां ये जाता है वहां वहां की वासनाओं को इकट्ठी करता रहता है। अंत में किसी समय जब इसका इस प्रकार का संसार के अंदर अत्याचार बढ़ता है, तो इसके दुख का समय, इसके निवृत्ति का समय आता है। इंद्र ने जाकर के भगवान से कहा कि अब इसको ठीक करना है। ठीक इसी प्रकार से कभी न कभी किसी न किसी ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि होती है कि इस जीव का कल्याण करना है। कल्याण करने वाला तो परमात्मा ज्ञान ही है, जिसको यहां कहा ज्ञेयम्, वह परमात्मा ही ज्ञेय है। अब जब वहां पर भगवान पहुंचते हैं तो पहले वो मूल को भेजता है। मूल के 5 सिर हैं, 5 प्रकार के भ्रम ही 5 सिर हैं। जीवेश्वरो भिन्न रूप इति प्राथमिको भ्रमः, जीव और ईश्वर स्वरूप से अलग अलग है, ये पहला भ्रम। जीव का कर्तापना सच्चा है, ये दूसरा भ्रम। जीव को संग होता है, चीजों से दोष वाला जीव बनता है। ये तीसरा भ्रम, जगत का कारण जो परमेश्वर है वो विकार वाला है। परमात्मा के अंदर विकारिता की दृष्टि और जगत परमात्मा से भिन्न होकर के सच्चा है, अपनी सच्चाई से सच्चा है। ये पांच भ्रम मूर्ते हैं, जब तक इन पांच भ्रमों को पहले नष्ट नहीं कर दिया जाता तब तक नरकासुर समाप्त होगा नहीं। अब इस प्रकार से भ्रम और भ्रम के ध्वजों को खत्म करने के बाद नरकासुर मारा जाता है। अब जितने उसकी वासनाएं एकत्रित की हुई थी नरकासुर के मरने के बाद, वो सारी की सारी अब भगवान कृष्ण की तरफ मुड़ गई, अर्थात अब सारी वृत्तियां परमेश्वर को विषय करने लगती हैं। ये जो सारी वृत्तियां परमेश्वर को विषय करती है, इसलिए कहा सर्वत पाणिपादं तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखं सर्वत श्रुतिमल्लोके लोके। इस संसार में उसके बाद जब मनुष्य इस बात को जान जाता है, तो पहले तो सोच रहा था इस परमात्मा को कहां पाऊंगा, और अब जहां देखता है वहां उसको परमात्मा के सिवाय और कोई चीज वास्तविक नजर आती ही नहीं। हाथ से देखता है तो परमात्मा को देखता है, हाथ से छूता है तो परमात्मा को छूता है। जहां कुछ जो भी है वो सब परमात्मा रूप हो जाता है। इस परमात्मा रूपता की प्राप्ति के लिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यह है परमात्मा को इस प्रकार से जानना है। और ये जो प्रकार कहता है इस पर आगे विचार करेंगे। ओम भद्रम।